अभिमान देर रात तक ऑफिस में ही था, उसके साथ रचित भी वहीं था। जब अभिमान को पता चला आशिका भी देर रात तक ऑफिस में काम कर रही थी, आशिका ने उनसे सैलरी के अलावा सिक्योरिटी की डिमांड की थी, लेकिन उनके सबसे भरोसेमंद सिक्योरिटी गार्ड किसी काम के चलते छुट्टी पर थे, तो रचित ने अभिमान के सामने आशिका को ड्रॉप करने का सुझाव रखा। अभिमान ने भी उसे मान लिया था, अगर उसने आशिका की सिक्योरिटी का वादा किया था तो वो उसे हर हाल में निभाने वाला था। अभिमान और रचित आशिका के पास टेक लैब में जा ही रहे थे कि अभिमान के पास आशुतोष का मैसेज आया। उन्होंने कल शाम डिनर के लिए उसे सिंघानिया मेंशन में बुलाया था। उनके इस तरह अचानक बुलाने पर अभिमान समझ गया था कि आशी ने ही इस मामले में कुछ किया है। अब तक जो आशुतोष सिंघानिया अभिमान की शक्ल तक नहीं देखना चाहते थे, आज उन्होंने खुद से मैसेज करके उसे अपने घर बुलाया था, तो कारण छोटा नहीं रहा होगा। वहीं अभिमान के चेहरे का उड़ा हुआ रंग देखकर रचित ने पूछा, क्या हुआ, अचानक इस तरह चेहरे का रंग क्यों उड़ गया? थोड़ी देर पहले तो बहुत खुश थे, क्योंकि आज का तुम्हारा दिन अच्छा रहा। जब तक ये आशी नाम की मुसीबत मेरे सर पर है, तब तक मैं खुशी से कैसे रह सकता हूँ? आज दिन नहीं बिगड़ा तो इसने मेरी रात बिगाड़ने का इंतजाम कर लिया, अभिमान ने दांत पीसते हुए कहा और अपने मोबाइल की स्क्रीन को रचित की तरफ कर दिया था। आशुतोष सिंघानिया ने तुम्हें बुलाया है, रचित ने हैरानी से आंखें बड़ी करके कहा। तू तो बेटा गया, जहां तक मुझे पता है तो उनकी कोई बात नहीं टालने वाला, क्योंकि तेरे दिल से कभी ये गिल्ट कभी नहीं जाने वाला कि तुम्हारी वजह से उनकी बेटी की मौत हो गई। लगता है हमें नए कपड़े खरीदकर शहनाइयां बजाने की तैयारी कर लेनी चाहिए, रचित काफी एक्साइटेड होकर बोल रहा था। अभिमान ने उसकी तरफ घूर कर देखा तो उसने अपने होठों पर उंगली लगा ली थी। इससे पहले कि अभिमान कुछ कह पाता, उसके केबिन के दरवाजे पर किसी के आने की आहट हुई। दरवाजे पर आशिका आई, उसने अंदर आने से पहले डोर लॉक करके बाहर से पूछा, कैन आई कम इन? अब उसके सामने अपना मुंह बंद ही रखना, बाकी मैं मिस्टर सिंघानिया की इज्जत करता हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि उनकी बेटी को उम्र भर झेलने वाला हूँ, अभिमान ने धीमी आवाज में कहा और फिर खुद जाकर केबिन का दरवाजा खोला। सामने आशिका खड़ी हुई थी, उसने अपने चेहरे पर बड़े से रीडिंग ग्लासेस लगा रखे थे जिससे वो और भी क्यूट लग रही थी। ज्यादातर स्क्रीन के आगे काम करने की वजह से आंखें खराब ना हो जाएं, इसीलिए आशिका जब भी लंबे टाइम तक काम करती तो वो रीडिंग ग्लासेस पहनती थी। मैंने आपसे सिक्योरिटी का कहा था मिस्टर राजवंश, मैं इसी टाइम तक यहाँ काम करने वाली हूँ, तो मुझे ड्रॉप करने और सिक्योरिटी के लिए कोई चाहिए होगा, मुझे यहाँ कोई नज़र नहीं आ रहा सिवाय आप दोनों के, आशिका ने सीधे सीधे कहा। उसके बोलने के तरीके में कोई बनावटीकन नहीं था। अगर तुम इतना ही लेट तक काम करने वाली हो तो मैं तुम्हें रोज़ ड्रॉप कर दूंगा, रही बात सिक्योरिटी की तो कल से वो ज्वाइन कर लेंगे, अभिमान बोला। आशिका ने हाँ में सिर हिला गया था, उसे कोई दिक्कत नहीं थी। जल्द ही वे तीनों गाड़ी के अंदर थे, अभिमान और रचित आगे थे तो आशिका पीछे बैठी हुई थी। पूरा दिन काम करने के बाद आशिका थोड़ी थक गई थी, वो आंखें बंद करके सीट पर लीन होकर बैठी थी ताकि थोड़ी देर रिलैक्स कर सके, तो वहीं अभिमान अपने ख्यालों में खोया हुआ था। वो आशुतोष के मैसेज के बाद परेशान हो गया था। ज़रूर आशी ने ही मेरे बारे में भला बुरा कहा होगा, तभी उन्होंने मुझे मैसेज किया है। रचित भले ही कुछ भी कहे, लेकिन मैं मिस्टर सिंघानिया को अच्छे से जानता हूँ, वो कभी इस शादी के लिए तैयार नहीं होंगे। तो क्या उन्होंने डिवोर्स के लिए मुझे घर पर बुलाया है? आखिरी बार उनका कॉल तब आया था जब उन्हें मेरी और आशी की शादी के बारे में पता चला था, तब भी वो मुझे खुद मिलने नहीं आए थे, तो आज कौन सी वजह हो सकती है जो उन्होंने मुझे घर तक बुला लिया, अभिमान ने अपने मन में कहा। सोचते हुए अचानक उसकी नज़र गाड़ी के फ्रंट में लगे मिरर की तरफ गई, जिसमें आशिका का चेहरा साफ नज़र आ रहा था। वो काफ़ी सुकून से आंखें बंद करके लेटी थी, जैसे उसे किसी भी तरह की कोई टेंशन ना हो। काश इसकी तरह मेरी लाइफ भी इतनी ही रिलैक्स होती, ना कोई मेरी शक्ल जानता और ना ही ठीक से नाम। जिस तरह से ये सबसे छुपती रहती है, यकीन के साथ कह सकता हूँ ऐश इसका रियल नाम नहीं होगा, अभिमान ने खुद में बड़बड़ा कर कहा। उसे आशिका की जिंदगी से जलन हो रही थी, ये जाने बिना भी कि आशिका ने अपनी जिंदगी में उससे ज्यादा सहा था। अभिमान की फिक्र करने के लिए उसकी माँ मौजूद थी, जबकि आशिका का तो कोई नहीं था। आशिका के बताए एड्रेस पर पहुंचने पर रचित ने गाड़ी रोकी और आशिका की तरफ पलट कर कहा, तुम्हारा डेस्टिनेशन आ गया है ऐश। आशिका ने अपनी आंखें खोली और बैग को उठा लिया था। रचित और अभिमान को लगा कि वो उन्हें थैंक यू कहने वाली है। आशिका ने रचित की तरफ देखा, उसके कुछ कहने से पहले ही रचित जल्दी से बोला, अब इसमें थैंक यू बोलने जैसी कोई खास बात नहीं है, सुबह 8:30 बजे पिक करने के लिए आ जाना, आशिका ने इतना ही कहा और बैग उठाकर चली गई थी। आशिका उसे थैंक यू नहीं कहने वाली थी और उसने पहले ही ज्यादा सोच लिया था। रचित का चेहरा देखने लायक था, उसका मुंह बन गया था, तो वहीं अभिमान उसे देखकर जोर जोर से हंसने लगा था। रचित ने मुंह बनाकर कहा, चिंता मत करो बेटा, एक दिन तुम्हारी भी इससे बड़ी बेइज्जती करने वाली है ये लड़की। हैकर्स थोड़े अजीब और पागल जैसे होते हैं, लेकिन इसने तो सबको पीछे छोड़ रखा है, तभी ये नंबर 1 हैकर है, अजीब लड़की है, चेहरे पर कोई एक्सप्रेशंस नहीं होते, मैंने इसे स्माइल करते हुए भी नहीं देखा। इसका बस चले तो अपनी आंखों से ही सामने वाले को मार डाले। ऐसे बात करती है जैसे एहसान कर रही हो। सोचा था कि अच्छा कंपेनियन मिलेगा, लेकिन नहीं, घमंडी कहीं की। थोड़ी ही देर में रचित ने आशिका को अच्छा खासा भला बुरा सुना दिया था। कितनी भी अजीब या घमंडी क्यों ना हो, इसने तेरे को बहुत अच्छे से पहचाना है, और मुझे ऐसे अजीब लोग अच्छे लगते हैं। इसने मेरा मूड एक मिनट में ठीक कर दिया, अभिमान ने हंसकर कहा और रचित को गाड़ी ड्राइव करने का इशारा किया। आशिका की वजह से अभिमान कुछ देर के लिए ही सही, लेकिन आशुतोष और आशी के बारे में भूल चुका था। वहीं दूसरी तरफ अभिमन्यु को किसी काम के चलते बाहर रुकना पड़ा, तो इशिका अकेले ही राजवंश मेंशन में आई थी। पहले ही उसे आने में काफी देर हो गई थी, तो गाड़ी से निकलकर इशिका सीधे अंदर की तरफ जा रही थी कि फिर से पहले की तरह सिद्धांत उसके सामने आ गया था। इशिका उसके सीने से टकराते टकराते बची थी। सिद्धांत को अपने सामने देखकर इशिका कुछ कदम पीछे हो गई थी और वो उसे सर्द निगाहों से देख रही थी। संभल कर डॉक्टर मर्चेंट, आज दिन में दूसरी बार आप मुझसे टकराते हुए बची हैं, सिद्धांत ने तिरछा मुस्कुराते हुए कहा। या यूं कहें कि दिन में दूसरी बार तुमने मेरा रास्ता काटने की कोशिश की है। इरादे ठीक नहीं लग रहे तुम्हारे सिद्धांत राजवंश, गलती से भी मेरे लिए प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश मत करना, वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा, इशिका ने गुस्से में जवाब दिया। अरे अरे, आप तो गुस्सा हो गई, जबकि मैंने सोचा था कि हम साथ में काम करेंगे। चलिए, आज जो भी हुआ उसे भूलकर आगे बढ़ते हैं। राजवंश एम्पायर्स ने न्यू एनर्जी के फील्ड में रिसर्च एंड डेवलपमेंट का काम शुरू किया है, ज्यादा नहीं, बस 3-4 महीने के लिए ज्वाइन कर लो। बाहर ये न्यूज फैल गई कि डॉक्टर मर्चेंट ने राजवंश एम्पायर को ज्वाइन किया है, तो आगे हमें कोई मेहनत नहीं करनी पड़ेगी और प्रोजेक्ट्स मिलते रहेंगे, इन्वेस्टर्स खुद बखुद चल कर आ जाएंगे। तो कब आ रही हो तुम राजवंश एम्पायर्स, सिद्धांत ने काफी कॉन्फिडेंट होकर कहा, मानो इशिका तुरंत उसके प्रपोजल पर हाँ कह देगी।
उसका ये ओवर कॉन्फिडेंस देखकर इशिका के चेहरे पर सरकास्टिक स्माइल थी। उसने तुरंत ना में सिर हिलाया और कहा, मैं किसी कंपनी के लिए काम नहीं करती मिस्टर राजवंश, अगर मुझे राजवंश एम्पायर्स ज्वाइन ही करना होगा तो मैं अपने पति की कंपनी ज्वाइन करूंगी जहां मैं खुद शेयर होल्डर हूँ। दूसरी बात, मैं अभिमन्यु के अलावा राजवंश खानदान के किसी भी दूसरे आदमी के साथ काम नहीं करूंगी। सोचा नहीं था कि तुम इतनी नैरो माइंडेड हो। हम काम ही करेंगे डॉक्टर मर्चेंट, कहीं ख्यालों में कुछ और तो नहीं चल रहा ना तुम्हारे? खूबसूरत हो पर इतनी भी नहीं कि सिद्धांत राजवंश तुम जैसी लड़की के पास आएगा, सिद्धांत ने हंसकर कहा। वो इशिका का मजाक बना रहा था। इशिका ने उसकी तरफ घूरकर देखा और कहा, लगता है कुछ ज्यादा ही गलतफहमी में रहते हो। तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है ये तुम्हारी बातों से जाहिर हो रहा है। पार्थ के साथ मेरा जो भी वर्किंग एक्सपीरियंस रहा उसके बाद में मैंने ये डिसीजन लिया था, और तुम कुछ गलत ही सोच रहे हो। किसके दिमाग में कौन सी गंदगी चल रही है ये साफ समझ आ रहा है। दूसरी बात, अगर मैं एक पल के लिए ये भूल भी जाऊं कि तुम राजवंश फैमिली से बिलोंग नहीं करते हो, तो भी तुम में और तुम्हारी कंपनी में ऐसा कुछ नहीं है जो मैं तुम्हें ज्वाइन करूं। इशिका ने एक पल में सिद्धांत के घमंड को तोड़ दिया था। वो वैसे भी काफी घमंडी और एग्रेसिव इंसान था। इशिका की बातों से वो आग बबूला हो गया था। तुम्हारी तो, सिद्धांत ने इशिका पर हाथ उठाने के लिए अपना हाथ ऊपर उठाया ही था कि उसके मुंह पर एक जोरदार पंच पड़ा। इशिका ने कभी नहीं सोचा था कि सिद्धांत उस पर हाथ उठाने की कोशिश करेगा, और ना ही वो इसके लिए तैयार थी। इशिका ने तुरंत पीछे देखा तो वहां अभिमान खड़ा हुआ था। सिद्धांत लड़खड़ाकर कुछ कदम पीछे हो गया और वो इस वक्त अभिमान को खा जाने वाली निगाहों से घूर रहा था। आखिर प्रॉब्लम क्या है तुम्हारी, क्यों बार बार बीच में आ जाते हो? तुम्हारा तो हमारी फैमिली के साथ कोई रिश्ता नहीं है, बेहतर होगा हमारे मामले में दखल ना दो, सिद्धांत ने गुस्से में चिल्लाकर कहा। वो अभिमान को मारने के लिए आगे बढ़ ही रहा था कि अभिमान ने फिर से उसे पीछे धकेल दिया था। और तुम्हें ये खुशफहमी कैसे हो गई कि मुझे तुमसे और इस परिवार के साथ रिश्ते निभाने में कोई दिलचस्पी है? ये अभिमन्यु चाचू की वाइफ है, उनके साथ मैं रिश्ता मानता भी हूँ और उनकी रिस्पेक्ट भी करता हूँ। अगर आगे से इशिका के साथ बदतमीजी करने की कोशिश की तो तुमसे बदला लेने के मेरे पास 100 तरीके हैं, लेकिन उससे पहले चाचू तुम्हारा मुँह तोड़ देंगे, अभिमान ने दांत पीसते हुए कहा। सिद्धांत अपनी इस बेइज्जती को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करने वाला था। वो अभी भी पीछे हटने को तैयार नहीं था। सिद्धांत अभिमान की तरफ बढ़ते हुए बोला, अच्छा तो तुम्हें बदला लेने का कुछ ज्यादा ही शौक चढ़ा है, तो आओ मेरे सामने, मैं तुम्हें बताता हूँ बदला कैसे लिया जाता है। पहले मुझे तुम पर दया आती थी, लेकिन अब लगता है आकाश चाचू ने बिल्कुल सही किया। अरे करते भी क्या, एक बीमार औरत के साथ रहकर, सिद्धांत अपनी बातों से अभिमान को उकसा रहा था। इससे पहले कि वो फिर से मारने के लिए उसे आगे बढ़ता, इशिका ने अभिमान का हाथ रोक लिया था। कुछ ही देर में इशिका को सिद्धांत के इरादे समझते देर नहीं लगी। वो जानबूझकर अभिमान को उकसाता था ताकि वो सामने से आकर लड़ाई करे, और फिर बाद में वो दिग्विजय को कॉल करके अभिमान के खिलाफ भड़काता था। अब तक राजवंश फैमिली में सबको यही लगता था कि अभिमान जानबूझकर आकाश का बदला पूरे राजवंश फैमिली से ले रहा था, जबकि सच तो ये था कि ये सब सिद्धांत के चालबाजियों का नतीजा था, जिसके चलते अभिमान गुस्से में उन्हें बर्बाद करने पर तुला हुआ था। ऐशिका को समझ आते ही वो अभिमान को इस बार सिद्धांत का मोहरा नहीं बनने दे सकती थी। उसने अभिमान का हाथ पकड़ा और उसकी आंखों में देखकर कहा, तुम्हें रुक जाना चाहिए, ये सही नहीं है। लेकिन इसने गलत किया है, ये आपकी इंसल्ट कर रहा था। अगर चाचू मेरी जगह होते तो वो भी यही करते, अभिमान भौहें उठाकर बोला। हाँ जानती हूँ ये गलत है, पर यह तुम्हारी कमजोरी का फायदा उठाकर तुम्हें प्रोवोक कर रहा है। अगर अभिमन्यु यहाँ होता तो वो भी तुम्हें रुकने को कहता। अभी तुम गुस्से में हो, मेरे साथ चलो, हम बैठकर बात करते हैं, ऐशिका ने शांत लहजे में कहा। हालांकि सिद्धांत पर गुस्सा तो उसे भी बहुत आ रहा था। अभिमान ने ऐशिका की बात पर हाँ ही भरी और उसके साथ जाने लगा, तो वहीं सिद्धांत पीछे से हंसकर बोला, डर गए क्या जो एक लड़की के पीछे छुपने की कोशिश कर रहे हो? कभी अपनी माँ की गोद में छुप जाते हो तो कभी उस आशी सिंघानिया के चलते हम तुम्हें कुछ नहीं कह सकते, तुम इसी लायक हो। अभिमान ने पलटकर सिद्धांत की तरफ देखा, लेकिन ऐशिका उसे खींचते हुए वहां से ले गई थी। आशुतोष के मैसेज के बाद अभिमान पहले से ही परेशान था, ऊपर से सिद्धांत की हरकतों ने उसके गुस्से को बढ़ा दिया था। नीचे भले ही अभिमान ने ऐशिका को कुछ नहीं कहा था, लेकिन ऊपर आते ही उसने ऐशिका का हाथ अपने हाथ से अलग करके सख्त आवाज में कहा, आपको मुझे रोकना नहीं चाहिए था, क्या आप और चाचू इसीलिए यहाँ पर आए हैं? अब तो आपको भी समझ में आ गया होगा ये लोग कितने घटिया हैं। हाँ सब समझ में आ गया, और अभिमन्यु यहाँ क्यों आया है इसका कारण मुझे अब समझ आ रहा है। अभिमान, अभिमन्यु इसीलिए नहीं आया है ताकि दिग्विजय दादू की बात मानकर वो तुम्हें कुछ भी करने से रोके। मतलब अभिमन्यु ये बात पहले से जानता था कि ये तुम्हारा इस्तेमाल करके कुछ बड़ा प्लान कर रहे हैं, वो बस तुम्हें मोहरा बनने से रोकना चाहता है, तब यहाँ आया है, ऐशिका ने अभिमान को समझाने की कोशिश की। तो वहीं अभिमान हैरानी से उसकी तरफ देखने लगा था। अब तक अभिमान को यही लगता था कि सिद्धांत और विक्रम की नज़र उसके हिस्से की प्रॉपर्टी पर है, जबकि बात कुछ और ही थी। आखिर ऐसा क्या था जो अभिमान इतने सालों में भी नहीं समझ पाया और ऐशिका वहां आते ही एक बार में समझ गई थी।